बाबा के बेहद घर में हम सब बाबा के बच्चे बेहद का पुरुषार्थ करके बेहद की कमाई जमा कर रहे हैं। कितना सुंदर बाबा का ये घर और कितना प्यारा ये परिवार जिसके साथ मिलजुल कर हम बच्चे ये पढ़ाई का होमवर्क कर रहे हैं। आज मेरा भी ये सौभाग्य है कि मधुबन में आए हुए आप सभी सेवाधारी भाई बहनों के साथ बाबा की पढ़ाई का होमवर्क हम करेंगे। बाबा ने हम बच्चों को इस ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य दिया है। यहाँ जो भट्टी हमारी चल रही है उसमें भी आज हमको ये सम्मान मिला कि हमें डबल लाइट बनकर क्या बनना है, डबल लाइट फरिश्ता। और वही लहर आज सभी हमारे महारथी भाई बहनों की रही कि किस तरह से हमें अपने इस ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है जो हमारे प्यारे बाबा के हम बच्चों के प्रति ये एक दिल की आश है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन करके अब वतन में आए और फिर हम नई दुनिया का उद्घाटन करें। तो फरिश्ता हमारा जो अपना स्वरूप है, जो बाबा का दिया हुआ लक्ष्य है, क्योंकि शुरू में बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया था कि ब्राह्मण सो देवता बनना है, लेकिन फिर बाबा ने पढ़ाई को आगे बढ़ाया और कहा कि ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता और देवता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फरिश्ता बन गए मनोदेवता बन गए। यूं तो देवता सतयुगी कहलाते हैं पर संगम युग पर बाबा हमको फरिश्ता बनाते हैं। फरिश्ता हमको इसलिए बनना है क्योंकि हमको देवता बनना है। बाबा ने कहा है कि फरिश्ता बने माना देवता बनना है तो उससे पहले फरिश्ता जरूर बनना है। फरिश्ता बने बिगर कोई भी ब्राह्मण देवता नहीं बन सकेगा, इसलिए भी हमको फरिश्ता बनना है क्योंकि बाप समान बनने का हम बच्चे लक्ष्य लेकर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो जरूर है कि बाप समान बनना माना ही फरिश्ता बनना। हमारे बाबा फरिश्ता बाबा जो हम बच्चों को बार बार इशारा कर रहे हैं कि आपको मेरे समान बन करके मेरे पास आना है। फरिश्ता इसलिए भी हमें बनना है क्योंकि ये हमारी बेहद की कमाई का आधार है। फरिश्ता स्वरूप में हम बच्चे बेहद की कमाई कर सकते हैं, ये हमारी उड़ती कला भी है। जो आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि साधारण पुरुषार्थ का समय अब पूरा हुआ, अब उड़ती कला के पुरुषार्थ का समय है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है और समय बहुत कम है और हम सब बच्चे देरी से आए हैं बाबा के पास। जरूर है कि उड़ती कला के आधार पर ही हम संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। और वैसे भी जब बाबा ने हमें कहा है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो चाहे सतयुग में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना हो या कोई साधारण पद भी प्राप्त करे, परंतु फरिश्ता तो सबको बनना है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि जो राजा रानी बनने वाला है वो फरिश्ता बनेगा, जो प्रजा में जाने वाला है उसको फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। मना सतयुग में हर एक देव आत्मा है, मना देवता है, तो इसलिए यहां भी हर एक को ही क्या बनना होगा, फरिश्ता। फरिश्ता हमारी बेहद की कमाई का आधार है क्योंकि फरिश्ता उड़ती कला वाला होता है, जिस तरह से देवता और फरिश्ता, ये जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया तो उसमें अंतर क्या है? ब्राह्मण से सीधा हम देवता बन जाएं तो भी चलता ना, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा पहले बीच में फरिश्ता जरूर बनना है। क्योंकि देवता और फरिश्ता, बाबा ने कहा फरिश्ता पुरुषार्थी जीवन है, देवता प्रारब्ध है, और दोनों में से बड़ा कौन? बाबा से माना प्रश्न पूछा गया कि बाबा दोनों में से बड़ा कौन? बाबा ने कहा आप बच्चे बताओ दोनों में से बड़ा कौन, पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर प्रारब्ध है। पुरुषार्थ पहले है, प्रारब्ध पीछे है। जरूर है पहले फरिश्ता और फिर देवता, फरिश्ता पुरुषार्थ और देवता प्रारब्ध। तो इसलिए बिना पुरुषार्थ के कभी प्रारब्ध मिलती नहीं। प्रारब्ध हमको पानी है तो उसका पुरुषार्थ भी है, परंतु कई बार हमको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये शायद जो हमारे पुराने भाई बहने हैं, जो आदि रतन हैं, हमारी दादियां हैं, वो ही मम्मा बाबा के समान फरिश्ता बन सकते हैं, हम कैसे बन सकते हैं? नहीं, परंतु पुरुषार्थ करके हर एक बाबा का बच्चा अपने उस लक्ष्य को पा सकता है। क्योंकि फरिश्ता और देवता दोनों में अंतर क्या है? देवता भी पुरुषार्थ करता है, फरिश्ता भी पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ माना देना, माना दाता बनना। हमारा विशेष पुरुषार्थ है दाता, चाहे वो ज्ञान का सब्जेक्ट है, योग है, धारणा है, सेवा है, परंतु विशेष बाबा ने सेवा को महत्व दिया कि जब तक कोई बच्चा सेवा नहीं करता है तो बाबा कई बार कह देते कि ये बच्चा तो खाली रह जाएगा, है ना, क्योंकि सेवा करके उसने भाग्य नहीं बनाया। परंतु सेवा होती है धारणा से, बिना धारणा मूर्त बने सेवा नहीं कर सकते, परंतु धारणा होती है ज्ञान और योग से। तो ज्ञान, योग, धारणा, उसके बाद है सेवा। तो जरूर है कि देवता माना दाता, फरिश्ता माना दाता, दोनों ही देने वाले हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? फरिश्ता भी देता है, देवता भी देता है, पर दोनों में अंतर ये है कि फरिश्ता बिन मांगे देता है और देकर के रिटर्न में कुछ लेता नहीं है, और देवता जब देता है तो देवताओं से मांगा जाता है और देकर के फिर जब हम लेते हैं देवता से तो उसको कुछ देते भी हैं, है ना। तभी तो देवताओं के आगे मन्नत मानी जाती है कि हमारी ये मनोकामना आप पूरी करना, फिर हम आपको ये उसका रिटर्न देंगे। देवियों से मांगते हैं ना तो क्या कहते हैं, फिर हम आपके आगे नारियल चढ़ाएंगे, 101 रुपए का या 110 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, मतलब कि आप हमें ये देना और फिर हम आपको रिटर्न में ये देंगे। फिर हमारी मनोकामना पूरी हो जाती थी भक्ति में तो हम क्या करते थे, फिर रिटर्न देते थे कि हमने ये मन्नत मानी है तो हमको ये देना है। पर फरिश्ते के लिए कहा जाता है कि उससे ना कोई मांगता है और ना ही उसको कोई रिटर्न देता है, परंतु वो बिन मांगे देता है, जैसे कि वो फ्री होम डिलीवरी करता है, जहां जिसको आवश्यकता होती है वहां पहुंच करके बिन मांगे उसकी सेवा करता है और फिर रिटर्न में कुछ लेता नहीं है, वो फरिश्ता कहलाता है। जैसे बॉम्बे में देखो हर साल जब बरसात में बहुत पानी आ जाता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो कई ऐसे सेवाधारी हैं जो वहां पर उनको बचाने की, लोगों को पानी से बचाने की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक बार ऐसे पानी आया और सेवाधारियों ने उनकी सेवा की, एक बहन को किसी भाई ने बचाया डूबते हुए और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, और फिर जब उसको होश आया तो पूछने लगी कि मुझे किसने बचाया। तो कहा वो बचाने वाला तो यहां नहीं है, क्योंकि वो उनको हॉस्पिटल में छोड़ करके और खुद दूसरों को बचाने के लिए जा चुका था। वो वहां पर ये इंतजार करने के लिए खड़ा नहीं रहा कि जब ये बहन होश में आए और फिर मैं इसको बताऊं कि मैंने आपको बचाया है। तो इस रिटर्न के लिए भाई मेरा वो शुक्रिया करे, उस रिटर्न के लिए वो खड़ा नहीं रहा और वो दूसरों को बचाने चला गया। अब उस बहन का अनुभव न्यूज़पेपर में आया था कि एक फरिश्ता जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया करना चाहती हूं, परंतु वो मुझे मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं है। परंतु अगर वो भाई वहां पर हाजिर रहते और बहन उसका शुक्रिया कर देती, तो क्या ऐसा वो लिखती अपने अनुभव में कि एक फरिश्ते ने मेरी जान बचाई और फिर मैंने उसका शुक्रिया किया। तब तो ये कहती कि फलाने नाम के भाई ने मेरी जान बचाई और मैंने उसका शुक्रिया किया। मतलब किसको फरिश्ता उसने कहा जिसने उस सेवा के रिटर्न में उससे कुछ भी इच्छा नहीं रखी, है ना। तो फरिश्ते की परिभाषा क्या हो गई कि बाबा चाहते हैं कि हम जो करें उसका हम रिटर्न ना चाहें, परंतु इस तरह से करें कि मैंने बाबा के लिए ये कर्म किया है और बाबा ने तो कहा ही है कि एक कर्म का मैं पद्म गुना आपको देता हूं। मांगने का या सोचने का संकल्प भी नहीं करना है। और दूसरी बात है कि फरिश्ते को ऐसा कभी समझते थे कि शायद वो कहीं ऊपर की दुनिया में रहता है, वो संसार का प्राणी नहीं है, क्योंकि उसको पंख दिखाते हैं तो समझते हैं वो संसार का नहीं है, वो उड़ता रहता है। परंतु अगर वो संसार का न होता तब उसकी कोई मूर्ति आदि भी नहीं बनती। जिस तरह से बाबा कहते ना कि मेरी शिवरात्रि मनाते हो, मेरा शिवलिंग रखा है, जरूर मेरा स्वरूप है, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं और मेरा अवतरण भी है, तभी तो आप मेरे याद में शिवरात्रि मनाते हो। तो इसी तरह से फरिश्ते का एक नाम है, फरिश्ते का एक स्वरूप दिखाते हैं, जरूर वो संसार में होकर गया है और उसी को ही याद किया जाता है जो कोई किसी के लिए कुछ करता है। बाबा कहते अगर मैंने कोई कर्तव्य यहां न किया होता तो न मेरा मंदिर बनता, न मेरी मूर्ति बनाते और न मेरे को कोई याद करता। तो ऐसे ही फरिश्ते को भी याद किया जा रहा है, जरूर वो इस संसार में आया है और कर्म करके गया है, इसलिए ही तो उसको सब याद करते हैं, प्यार करते हैं। और इतना बेहद में रहता है फरिश्ता कि जो कोई एक धर्म, कोई एक जाति या कोई एक मत वाले उसको याद नहीं करते हैं, परंतु सारी विश्व सभी धर्म के लोग उसको याद करते हैं। वरना तो देवता को कोई एक ही धर्म के लोग याद करते हैं, बल्कि उसमें भी अलग अलग, हिंदू धर्म में कितने सारे देवताएं हैं, परंतु फिर भी कोई संगठन किसी एक देवता को मानेगा तो दूसरा संगठन किसी दूसरे देवता को मानेगा, पर फरिश्ते को सारा विश्व मानता है। मानो वो धर्म, जाति, भाषा के बंधन में बंधा हुआ नहीं है, ऐसी बेहद की उसकी दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की शुभ भावना, सुख देने की भावना कि पूरा विश्व उसको मानता है और याद करता है। आज भी दीदी क्लास करा रहे थे तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि फरिश्ता जो है उसको देखो बूढ़ा या फिर जवान नहीं दिखाते, पर उसको बच्चा दिखाते हैं, क्योंकि फरिश्ता माना एक बच्चे जैसा इनोसेंट, एक बच्चे जैसा पावन, एक बच्चे जैसे मतभेद से परे, ऐसी सुंदर स्थिति वाला, प्योर दृष्टि वृत्ति वाला उसको फरिश्ता कहते हैं, जिसमें कोई प्रकार का मतभेद उसके दिल में नहीं रहता, ऐसा फरिश्ता। तो जरूर है कि फरिश्ता उड़ता भी है और फरिश्ता धरती पर आता भी है, क्योंकि ऊपर जाता है उससे लेने के लिए, ऊपर वाले से लेता है और नीचे आता है सबको देने के लिए। बस दो ही काम उसके हैं, ऊपर वाले से लेना और नीचे वालों को देना। नीचे वालों से उसको कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती है। नीचे वालों से कुछ लेने की इच्छा उसको नहीं रहती है, इसलिए वो फरिश्ता है। तो ऊपर जाता है लेने, नीचे आता है देने के लिए। तो वो हमारा खुद का स्वरूप है, क्योंकि फरिश्ता लाइट माइट स्थिति का प्रतीक है। इसलिए फरिश्ते को न बहुत मोटा दिखाते हैं और न बहुत पतला दिखाते हैं। बहुत मोटा होता है तो क्या कहते हैं, है ना, कहते हैं कि भाई भारी शरीर होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है। और जो बहुत पतला हो तो क्या कहते हैं कि ये ऐसा बीमार दिखाई देता है व्यक्ति, है ना, बहुत कमजोर दिखाई देता है। तो फरिश्ते को एकदम व्यवस्थित दिखाते हैं। हमारे बैलेंस की स्थिति का वो प्रतीक है, ना बहुत कोई बात में भारी और ना बिल्कुल दिल शिकस्त कमजोर, परंतु स्थिति बहुत सुंदर। ऐसी सुंदर स्थिति का प्रतीक ही है फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता हमारा एक स्वमान है, फरिश्ता हमारी एक ड्रेस है, और क्योंकि वो लाइट है तो इसलिए लाइट अर्थात हल्का। तो हम सभी बाबा के बच्चे अभी यहां संगम युग पर और खास मधुबन में एकदम क्या है, फरिश्ते हैं, है ना। यहां किसी को बोझ है, है? कोई बोझ नहीं, यहां बिल्कुल लाइट हो जाते हैं हम सभी, तो यहां फरिश्ता बन जाते हैं। लेकिन यही स्थिति हमारी निरंतर बनी रहे, तो फरिश्ता जो है उसको हल्का भी दिखाते हैं, उड़ता भी दिखाते हैं, और वो कार्य भी करता है, उसके संबंध भी हैं, लेकिन फिर भी फरिश्ते के संबंधों का कोई गायन नहीं है। कभी भी कोई कहे कि इस फरिश्ते के फलाने मात पिता हैं, ऐसा नहीं होता। देवताओं के मात पिता का गायन है, देवताओं के भाई बहनों का गायन है, परंतु फरिश्ते का नहीं, क्योंकि फरिश्ते के भी रिश्ते हैं। ऐसे नहीं कि फरिश्ता जो है वो अकेला ही सृष्टि पर होता है, फरिश्ता एक व्यक्तित्व है, जरूर उसको कोई रचने वाला है, उसके कोई मात पिता है, उसका कोई परिवार है, फिर भी उसका इस प्रकार का कनेक्शन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि फरिश्ते के रिश्ते होते हुए भी वो रिश्तों के लगाव झुकाव से परे है, इसलिए उसके रिश्तों का कोई गायन ही नहीं है। फिर फरिश्ते के क्या कहेंगे कि वो खाना पीना भी खाता है कि नहीं खाता है, खाता है फरिश्ता। अगर वो सेवा करता है तो खाता भी है, क्योंकि खाएगा नहीं तो सेवा कैसे करेगा, सेवाधारी है, जरूर वो खाता भी है, लेकिन फिर भी उसके खाने का कोई गायन नहीं है, जैसे देवताओं का है। देवताओं को भोग लगाया जाता है और उनकी पसंद का भोग लगाया जाता है, फिक्स है ना, कि गणपति को क्या भोग लगाना है, लड्डू का, है ना, देवी को कौन सा भोग लगाना है, लक्ष्मी नारायण को कौन सा भोग लगाना है, सत्यनारायण की कथा करते ना, फिक्स ऐसा भोग। लेकिन फरिश्ते का कोई भोग निश्चित नहीं है, बल्कि खाना वो खाता भी है ऐसा भी किसी को भान नहीं आता है, पर खाता जरूर है, खाता है, परंतु उसके खान पान की उसको कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए कोई भी पदार्थ उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि उसको ये पसंद आता है और ये नहीं आता। तो इसलिए एक बार हंसा बहन जानकी दादी जी का अनुभव सुना रहे थे कि एक बार उन्होंने उनके लिए भोजन बनाया और दाल को बघार करना, तड़का लगाना वो बाकी था, और वो किसी दूसरी सेवा में बिजी हो गए और दादी आए और किसी ने उनको वो भोजन परोस दिया। उनके साथ जगदीश भाई भी थे और वो दाल केवल उबली हुई थी, उसमें बघार तो नहीं किया था, तड़का तो नहीं लगाया था, परंतु उसमें नमक तक भी डाला हुआ नहीं था, और फिर भी उन्होंने उस भोजन को बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया। हम ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, तभी तो हमारे लिए यहाँ डाइनिंग टेबल पर हर एक टेबल पर नमक की डिब्बी रखी हुई है, जबकि कोई भोजन फीका नहीं होता है फिर भी डिब्बी रखी है, क्योंकि अगर कम हो तो हम और डाल लेते हैं, माना हम कम भी नहीं खाते हैं, तो उन्होंने फीका खाया। ऐसे ही बाबा का मिसाल बताते हैं कि बाबा एक बार करेला खा रहे थे, बाबा अपने शरीर को ठीक रखने के लिए बाबा का रथ है ना, करेला भी खाते थे क्योंकि तबीयत के लिए अच्छा होता है। तो कोई भाई आए तो पूछा, बाबा आप क्या खा रहे हैं? तो बाबा ने जवाब नहीं दिया, परंतु एक टुकड़ा उनके हाथ पे रख दिया, बच्चे ये तुम भी खाओ। अभी वो करेला, क्योंकि कहीं मसालेदार हो तो चलो वो भी अच्छा लगता है, अगर बिना मसाले के हो तो कैसे खा सकते हैं। तो बाबा बड़े प्यार से उसको खा रहे थे, ऐसा कड़वा हमको कोई देवे और आपको खाना ही पड़ेगा तो हम कैसा मुंह बनाएंगे, कैसे चेहरे से खाएंगे, उसको बदल जाएगा ना हमारा चेहरा। तो बाबा उसको ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई मिठाई खा रहे हैं, माना खान पान की इच्छा कहें, उसके टेस्ट कहें या उसकी आसक्ति कहें, उससे भी परे। जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि मेरे सेवाधारी बच्चे मुझे वो प्रिय लगते हैं जो मिला खाया और सेवा पर भागे। यही मिलना चाहिए, यही होना चाहिए, ये भी क्या है, बंधन है। और फरिश्ता जो होता है वो सर बंधनों से मुक्त होता है, तभी तो उड़ता है। जैसे देखो एक पतंग कब उड़ती है, जब उसको स्वतंत्र रखते हैं। अगर एक पतला सा एक धागा भी बंधा हुआ हो तो भी वो उड़ नहीं सकती है, या एक छोटा सा पत्थर उसके ऊपर रख दो तो भी वो उड़ नहीं सकती है। तो बोझ थोड़ा सा भी हो, बंधन छोटा सा भी हो, तो भी हमको वो उड़ने नहीं देगा। तो फरिश्ता मना सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, तभी तो हम उड़ सकते हैं ना। तो कोई भी प्रकार का बोझ अगर हमारे ऊपर है तो उसको हमें खत्म करना है। बोझ कौन से हैं? एक तो बोझ हमारे हैं जो जन्म जन्मांतर से हमसे विकर्म हुए हैं, विकर्मों के बोझ हैं। विकर्म क्या होता है? जिससे किसी को तकलीफ मिलती है हमारे से। और बंधन क्या होता है? जो उस विकर्म को हमारे से करवाता है, जिसको हम कहते हैं हमारे पुराने संस्कार। कोई आसुरी संस्कार हैं, कोई पुराने संस्कार हैं, तो वो हमसे विकर्म कराते रहे हैं और उनसे वो जो हमारे ऊपर बोझ चढ़ा है वो बोझ हमको उतार करके ही फरिश्ता बनना है। नहीं तो जिन आत्माओं को हमसे तकलीफ हुई है वो हमको उड़ती कला में उड़ने नहीं देंगे। इसलिए नाहक कोई कोई से हमको तकलीफ मिलती है, हम कहते हैं इसको तो मैंने कुछ दुख दिया ही नहीं, फिर ये क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हैं। परंतु ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, जरूर कभी न कभी का हमारा उनसे कोई ऐसा लेन देन हुआ है। इसलिए तो बोझ है और साथ साथ बंधन है कि वो बोझ क्यों बना, क्योंकि वो ऐसा कोई संस्कार है जो हमसे ऐसा करवाता रहा है। तो संस्कार हमारा बंधन हुआ और उसके आधार पर किया हुआ कर्म और उससे दूसरों को मिला हुआ दुख वो हमारे ऊपर क्या हो गया, बोझ हो गया। तो वो दोनों चीजें हमको उड़ने नहीं देती हैं, फरिश्ता बनने नहीं देती हैं। अभी दोनों को हमें क्या करना होगा, बंधन को काटना है, बोझ को भी खत्म करना है। इसके लिए तो बाबा ने हमें ये पढ़ाई, जो पढ़ाई है कि अपना सुकर्मों का खाता जमा करो। तो सुकर्मों का खाता माना जिससे हमारे विकर्म खत्म होते जाएं। देखो जैसे किसी ने किसी को दुख दिया है, अभी बहुत वर्ष उनको दुख देते रहे हैं परंतु अभी सुख देना शुरू कर दिया, तो क्या याद रहेगा? दुख याद रहेगा कि सुख याद रहेगा? सुख, क्योंकि दुख देना वो पुरानी बात थी और अब तो सुख दे रहे हैं ना। तो अभी सुख दे रहे हैं तो जरूर है कि सुख देते देते उस आत्मा को जो दुख मिला था वो दुख उसको भूलता जाता है, जैसे कि वो आत्मा हमको क्षमा करती जाती है। अगर कोई कहे कि ये तो आपको बहुत दुख देते थे, कहते नहीं नहीं वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी ऐसा नहीं है। माना क्या कि आत्मा ने उनको क्षमा कर दिया, माना दुख दिया है जो उसका बोझ अभी क्या हो गया, हल्का हो गया। तो इस तरह से बोझों को उतारना है और बंधनों को काटना है। और बंधन जो है वो कैसे कटते हैं? तो अभी बाबा ने पीछे अव्यक्त वाणी में कहा था कि दो बातों का विशेष पुरुषार्थ है, एक है अटेंशन, दूसरा है अभ्यास। कोई भी हमसे विकर्म ना हो उसका अटेंशन देना है और जो हमें बनना है, जो हमें करना है, उसका हमें क्या करना होगा? अभ्यास। माने जो नहीं करना है, अटेंशन कि ये नहीं करना है, ये मेरे से ना हो, और जो करना है वो करना है, माने उसका अभ्यास। और जो नहीं किया उसका वो संस्कार हमारा खत्म होता जाता है, और जो हम करते जाते हैं वो हमारा नया संस्कार बनता जाता है। तो पुराना हिसाब हमारा चुकतु होता जाता है और नया खाता सुख का जमा होता जाता है। तो इस तरह से हमें भरपूर होना है, तब हम उड़ती कला में उड़ेंगे, तब हम फरिश्ता बनेंगे। जैसे एक गुब्बारा उड़ता कब है? जब उसके अंदर हवा भरते हैं। अगर पानी भरेंगे, गैस भरते हैं, पानी भरेंगे तो उड़ेगा, है ना? गुब्बारे में गैस के बजाय पानी भर दो, वो भी होता है, पानी वाला भी होता है, बच्चे ऐसे ऐसे करके खेलते हैं उससे, है ना? पर उसको उड़ा नहीं सकते हैं, है ना? नीचे की ओर ही वो रहता है, ऊपर नहीं रहता। तो उड़ती कला के लिए हमको अपने अंदर भरना क्या है? भरना है जिससे हम उड़ सकें। तो उड़ने के लिए क्या चाहिए? फरिश्ते को क्या दिखाते हैं? दो पंख दिखाते हैं। तो ज्ञान और योग का बल ही अपने अंदर भरना है। ज्ञान योग के बल से ही हम उड़ेंगे, और जो बंधन है उनको काटना है। बंधन है हमारे द्वारा होने वाले छोटे छोटे विकर्म या छोटी छोटी अवज्ञाएं। बाबा कई बार बताते हैं कि जब किसी ब्राह्मण से कोई भूल होती है तो उस भूल की सजा होती है कि उसका योग नहीं लगता है, माना वो उड़ नहीं सकती है। तो इसलिए उन संस्कारों को जिससे हमारे से भूलें होती हैं, वो हमें उन संस्कारों को खत्म करना है, क्योंकि सभी बंधनों को हमें काटना है और सभी बोझों को खत्म करना है। तो जिस तरह से कई धर्मों में होता है कि साल में एक बार सबसे क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा करना, हमारे से भी कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना, पर ऐसे कभी क्षमा नहीं होती है, कहने से क्षमा नहीं होती है, परंतु अगर हम उनको सुख देते जाएं तो अपने आप वो दिल से हमको क्षमा करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने श्रेष्ठ संस्कारों से औरों को सुख देना है, और जो हमारे दुख देने वाले संस्कार हैं उनको हमें परिवर्तन करते जाना है। तो अपने आप हमारे बोझ हल्के होते जाएंगे और हमारे बंधन कटते जाएंगे, तो हम उड़ती कला में उड़ सकेंगे। जब चाहें तब हम बाबा को याद कर सकेंगे और बाबा से मिलन मना सकेंगे। तो इस तरह से फरिश्ता बन करके हमको सच्ची कमाई, बेहद की कमाई करते जाना है। इसलिए जैसे बताया कि फरिश्ता उड़ता है, तो उड़ने के लिए उसको भरपूर होना जरूरी है, खाली खाली नहीं उड़ सकता है। इसी तरह से देखो, उड़ता हुआ किसको दिखाते हैं? कहते हैं कि जब एक पंछी को उड़ता हुआ देखा तो उसके आधार पर प्लेन बना, है ना? और प्लेन को उड़ते हुए हम देखें तो हम भी फरिश्ता बनकर के उड़ने के लिए पुरुषार्थ करने लग जाएं कि प्लेन कैसे उड़ता है। हम कहेंगे कि हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारा तो इतना बड़ा शरीर है, हम कैसे उड़ सकते हैं? पंछी तो बहुत हल्का होता है इसलिए उड़ता है, लेकिन प्लेन कितना भारी होता है, वो कैसे उड़ता है? उसका भी वजन बहुत है, परंतु उसके अंदर एक मशीनरी ऐसी है, उसके अंदर रिफाइंड पेट्रोल भरा है, इसलिए वो इतना वजनदार होते भी उड़ता है। तो ऐसे ही बाबा से ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर होकर के हम उड़ सकते हैं, खाली खाली नहीं उड़ सकते। खाली खाली हम होंगे तो यहां इस संसार के पदार्थ हमको अपनी ओर खींचते हैं कि ये इस व्यक्ति का मुझे प्यार नहीं मिला, ये मुझे वस्तु नहीं मिली, यहां मुझे सम्मान नहीं मिला, तो वो प्राप्तियां हमको ऊपर की ओर उड़ने नहीं देती। परंतु जब आत्मा ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न हो जाती है तो इस संसारिक कोई भी प्राप्ति की उसको इच्छा रहती ही नहीं, तो फिर उसके लिए उड़ना बहुत सहज हो जाता है। लेकिन जब ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न हो तब हम उड़ सकें, और संसारिक प्राप्तियों का तो बाबा क्या कहते हैं कि ये तो त्याग करते जाना है, क्योंकि त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है। तो इस रीति से हमें भरपूर होना है ईश्वरीय प्राप्तियों से, ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख से, जब हम संपन्न होते हैं तब हम उड़ते हैं। उड़ती कला के लिए खुशी बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी प्राप्ति न हो इस संसार की वो बड़ी बात नहीं है, पर आप अपनी खुशी को सदा कायम रखो। खुशी सबसे बड़ा खजाना है, परंतु वो प्राप्त होती ही है ज्ञान और योग के आधार पर, धारणा और सेवा के आधार पर, क्योंकि इस आधार पर हमें खुशी मिलती है। धारणा मना पवित्रता, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और ईश्वरीय सेवा से हमको खुशी मिलती है, ज्ञान सुनने से खुशी मिलती है, योग लगाने से खुशी मिलती है। तो ये हमारी खुशी का आधार है, और ये खुशी हमको उड़ती कला में उड़ाती है, मनोफरिश्ता बनाती है। इसलिए फरिश्ते के लिए दिखाते हैं कि वो उड़ता है, जिस तरह से हनुमान को भी दिखाते हैं वो उड़ता है। फरिश्ते को तो फिर भी दो पंख दिखाते हैं, पर हनुमान को तो पंख भी नहीं है तो भी वो उड़ता है, क्योंकि वो उड़ता है परमात्मा के प्यार के बल पर। इसलिए जब भी वो उड़ता था तो कैसे उड़ता था, एक ही शब्द कहता था, जय श्री राम, बस राम को याद किया और उड़ा। ये परमात्मा के प्रति प्रीत का आधार है। तो बाबा से जितनी हमारी प्रीत बढ़ती जाती है उतना हमारी उड़ती कला, माना हम फरिश्ते बन करके उड़ते हैं। उड़ते उड़ते कई बार कोई प्रकार के बंधन भी आते हैं, तो उन बंधनों को, उन विघ्नों को भी पार करना होता है, क्योंकि विघ्न क्या पड़ते हैं और कैसे पड़ते हैं। जैसे कहते हैं कि जब श्रीनगर से लद्दाख जाते हैं तो वहां पर जो है वो बीच में एक चुंबक का पहाड़ आता है, इसलिए पहले से ही अनाउंसमेंट प्लेन में हो जाती है कि यहां से अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो प्लेन को थोड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चुंबक का पहाड़ उसको अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो कहते हैं कि आप बेल्ट बांध लो ताकि ये आप घबराओ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं हो, तो पहले से अनाउंसमेंट हो जाता है। तो बाबा भी पहले से ही हम बच्चों को सावधान करते हैं कि जब आप इस ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को पाने के पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे तो आपको इस संसार में अपनी ओर आकर्षित करने वाले भी बहुत मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, मजबूती की एक बेल्ट बांध लेनी होगी, दृढ़ता की बेल्ट बांध लेनी होगी कि मुझे कहां पर भी इस संसार में आकर्षित नहीं होना है, तब हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। है ना, एक छोटी सी कहानी याद आती है। कहते कि एक राजा था, तो राजा बहुत ही सदाचारी था, प्रभु प्रेमी था, बहुत भक्ति करता था। तो भगवान एक बार उस पर खुश हुआ और उसने कहा कि आप मांगो, आपकी जो इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। तो राजा ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं ऐसे मेरी सारी प्रजा को, मेरे सारे परिवार को आप दर्शन दो। तो कहा कि तथास्तु, हो जाएगा। तो एक स्थान बता दिया कि आप उस पहाड़ी पर सबको ले आना और वहां पर मैं सबको दर्शन दूंगा। तो राजा बहुत खुश हो गया कि आज मेरी प्रजा को, मेरे परिवार को भी मेरी ही तरह प्रभु के दर्शन होंगे। तो जब सबको इकट्ठा कर लिया कि अभी चलो भगवान के दर्शन करने हैं, तो जब वो उधर यात्रा पर निकले तो आगे क्या देखा कि एक चांदी के, माना एक तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ है। तो गरीब प्रजा ने सोचा कि भगवान के दर्शन तो बाद में, पहले थोड़ा सा ये धन तो इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये तो बाद में नहीं मिलेगा, प्रभु के दर्शन तो कभी भी कर लेंगे। तो वो इकट्ठा करने लग गए, लेकिन बाकी सब आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे गए तो वहां चांदी का पहाड़ देखा। तो फिर दूसरे लोगों ने सोचा कि अरे चांदी वो तो तांबे से ज्यादा मूल्यवान है, थोड़ा ये ले लें, प्रभु के दर्शन बाद में करेंगे। फिर वो लेने लग गए, बाकी कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ वहीं रुक गए। फिर आगे बढ़े तो सोने का पहाड़, प्रजा तो सारी पीछे रह गई। अभी राजा का परिवार था, उसने सोचा कि सोना तो हमारे पास भी इतना सारा नहीं है जितना यहां है, चलो ये ले ले मैं। तो सोना लेने के लिए लग गए। अभी रह गए इस तरफ राजा और रानी, सारी प्रजा परिवार सब पीछे रह गया। तो राजा रानी ने सोचा कि नहीं, अभी हम तो जाकर के प्रभु के दर्शन जरूर करेंगे, पर क्या देखा, आगे तो हीरों के पहाड़ मिले, ऐसे मूल्यवान हीरे कि रानी ने कहा कि इतने तो मूल्यवान मेरे पास है ही नहीं, तो अब मैं भी तो ये प्राप्त करूं प्रभु के दर्शन बाद में। इसलिए वो हीरे लेने के लिए वहां रुक गई। तो अकेला राजा आगे बढ़ा तो प्रभु ने कहा, कहां गए बाकी सब? तो ये है हमारे लक्ष्य के आगे बढ़ने में विघ्न। इस संसार के चाहे संबंध हो, चाहे पदार्थ हो, इसलिए तो फरिश्ते के रिश्ते नहीं दिखाते ना, रिश्ते हैं पर रिश्तों के प्रति उसका कोई आकर्षण, कोई लगाव, कोई झुकाव नहीं है। कर्तव्य अलग चीज है, एक होता है याद करना, एक होता है याद का आना। याद करना और याद का आना, इसमें बड़ा महान अंतर है। कर्तव्य के लिए हम याद कर सकते हैं किसी को, बाबा ने मना नहीं किया कि जहां जो आपका कर्तव्य है आप उसको याद करो, कर्तव्य पूरा हो गया तो याद पूरी हो जाएगी। परंतु जो याद आती है वो याद फिर जल्दी से जाती नहीं है, क्योंकि बिन बुलाए आई है ना, बिन बुलाए मेहमान आया है तो वो फिर जल्दी जाता नहीं। और जो कार्य प्रति, कर्तव्य के प्रति याद है वो अंतकाल में नहीं आएगी, क्योंकि अंतकाल में हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। परंतु अगर ममत्व की याद है जो आती है, जो करना नहीं पड़ता है पर वो याद आती है, वो अंतकाल में भी आएगी। इसलिए फरिश्ता माना जिसके कोई भी रिश्तों से कोई इसका ममत्व नहीं है, कोई प्रकार का उसका बंधन, कोई प्रकार का उसका हिसाब किताब नहीं रहता है, क्योंकि इस रीति से वो चलता है, कर्तव्य भी निभाता है और जमा का खाता भी बनाता है, बैलेंस से चलता है, इसलिए वो उड़ता रहता है। इसलिए कई बार बाबा के बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं कि बाबा आपने कहा है ये आपका अंतिम जन्म है, क्या यही हमारा अंतिम जन्म है या कोई दूसरा जन्म भी हमारा होगा? बाबा से ये पूछेंगे तो बाबा तो बता सकते हैं ना कि हमारा क्या हिसाब किताब बाकी है, चुक तो हो गया है या बाकी है हमें पता नहीं चलता है, पर बाबा तो बता सकते हैं ना। लेकिन फिर भी बाबा क्या जवाब देते हैं कि अगर कोई हिसाब किताब होगा तो आपका जन्म अगला भी हो सकता है, अगर नहीं होगा तो दूसरा जन्म लेने की बात नहीं है, फरिश्ता तो सीधा देवता बनेगा, सीधा घर जाएगा और फिर स्वर्ग में आएगा। इसलिए वैष्णो देवी के वहां जाते हैं तो बीच में एक ऐसी गुफा आती है जिसको गर्भजून गुफा कहते हैं, कहते हैं उस गर्भजून गुफा से अगर कोई निकल जाए तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। पर क्या इतना ही सहज है मुक्ति और जीवन मुक्ति? तब तो सब उस गुफा से निकल जाएं और मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लें। परंतु उस गुफा से निकलने की एक विधि है, मतलब सहज नहीं निकल सकते, को हर कोई भी नहीं निकल सकता, क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत सारे विघ्न हैं। विघ्न माना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है कि सीधा सीधा व्यक्ति नहीं निकल सकता। अगर कोई बहुत मोटा है, कोई बीमार है, किसी को घुटने की दर्द है ना, तुरंत उस गुफा में जाने के लिए कभी बैठ जाना पड़ता है, कभी खड़े होना पड़ता है, कभी लेट जाना पड़ता है, कभी ऐसे मुड़ना पड़ता है, कभी ऐसे मुड़ना पड़ता है, और जो ऐसे नहीं कर पाएगा वो उस गुफा से निकल नहीं सकता है। तो फिर कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति उसको मिले? तो ये हमारी कहानी है, किसी और की नहीं। अगर हमारी मोल्डिंग नेचर होगी कि जैसे बाबा ने कहा वैसा हमने किया, जैसी परिस्थिति है वैसा हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो जरूर है कि हमारे हिसाब किताब कटते जाते हैं, चुकतू होते जाते हैं। बाबा की श्रीमत मिली, माना हम श्रीमत प्रमाण चलने से हम कई प्रकार के बोझों से मुक्त होते हैं। जैसे हम बहने हैं, समर्पित बहने, हमको बाबा सेवा के लिए भेजते हैं, आप घर गृहस्थ में रहते हैं, हम सेवा के लिए सब जगह जाते हैं। अब बाबा हमको किसी स्थान पर सेवा के लिए भेजते हैं तो क्यों भेजते हैं? जरूर वहां पर हमारी आवश्यकता है, या हमारा कोई हिसाब किताब भी हो सकता है। जैसे लौकिक में लौकिक संबंधों में होता है, हमारा फिर अलौकिक में है हिसाब किताब हमारा। लेकिन मैं कहूं कि मुझे यहां ही रहना है, वहां नहीं जाना है, अब जरूरत मेरी वहां है और रहना मुझे यहां है, हिसाब किताब मेरा वहां है और रहना मुझे यहां है, तो फिर मेरा हिसाब किताब चुकतू होगा? या मैं बाबा को खुश कर सकती हूं? नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने को मोल्ड नहीं किया, आज्ञाकारी नहीं बनी। तो इस रीति से जब हम कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, मोल्ड करना माना कदम कदम श्रीमत पर चलना। अभी श्रीमत मिली कि यहां बैठो तो यहां बैठ गए, श्रीमत मिली कि यहां से उठ करके यहां बैठो तो वहां बैठ गए, माना अपना संकल्प नहीं किया। तो जरूर है कि ये आज्ञाकारी का जो गुण है वो हमको कई प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है और कई बोझों से हल्का कर देता है। तो कदम कदम श्रीमत पर चलकर अपने को परिवर्तन करना, जिसको बाबा कहते ना जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बनता है। तो इस तरह से मोल्ड होने वाली आत्मा वो संपूर्ण बन जाती है, तो फिर जरूर है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने सारे हिसाब किताब अपने चुक तो कर लिए। तो वो ही ब्राह्मण सो फरिश्ता है और वो ही फरिश्ता सो देवता बनता है, उसको दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं, हिसाब किताब का जन्म। अगर बाबा कहते ना एडवांस पार्टी, तो वो तो सेवार्थ जाते हैं, नई दुनिया की स्थापना के लिए जाते हैं, परंतु जो कहीं हिसाब किताब के लिए पुनर्जन्म है वो उस आत्मा का नहीं होगा जो यहां पर ही अपने आप को फरिश्ता बना लेगी, मना अपने को मोल्ड कर लेगी, और मोल्ड करने से वो रियल गोल्ड बन गई। तो इस तरह से हम सभी प्रकार के बोझों से मुक्त हो जाते हैं और बंधनों से मुक्त होकर के उड़ती कला में उड़ करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो इस रीति से हमें फरिश्ता बन करके सो देवता बनना है। बाबा हमारे में ये आश रखते हैं, आज का हमारा स्वमान भी ये रहा और आज हमने बहुत सारी अपने बड़ों की क्लासेस भी की कि हमें कैसे फरिश्ता डबल लाइट बनना है। तो सहज तब है जब हम बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, लेकिन जहां हम अपने चलाते हैं वहां हमारा परिवर्तन रुक जाता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि जिसको बनना है उसको अपना लक्ष्य कायम रखना है। जिस तरह से पढ़ाई में भी लक्ष्य होता है तो उसी प्रमाण आगे बढ़ते हैं, और उस लक्ष्य का उनको क्या है कि एक महत्व होता है, तो उस महत्व के अनुसार ही वो उस लक्ष्य को पाते हैं, है ना। और अगर महत्व नहीं होता है तो लक्ष्य पकड़ेंगे ही नहीं, है ना। अगर किसी कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो केवल वो धन कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनता है, परंतु उसकी एक उसके प्रति एक भावना एक वृत्ति होती है कि मैं ऐसे दुखियों की सेवा करूं, तब वो डॉक्टर बनता है। वरना तो पैसा कमाने के लिए तो एक बिजनेसमैन बनना चाहिए। वैसे भी जो बहुत साहूकार लोग होते हैं वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, कोई ऐसे नौकरी धंधे वाले नौकरी वाले नहीं बन सकते। लेकिन जो कोई कहता मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई बच्चा कहता ना, तो उसकी देश सेवा की एक भावना होती है। ऐसे ही हमें जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कि फरिश्ता बनना है, तो ये हमारी सेवा भाव का हमारा लक्ष्य है। यहां सेवा की भावना तो आगे 21 जन्मों के लिए खाता भरपूर हो जाता है। तो ये हमारा स्वमान केवल हमें मनसा में ही नहीं याद करना है, लेकिन हर एक चीज बाबा चाहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा। मनसा में इसकी स्मृति भी रखनी है, है ना, और वाचा भी कैसे फरिश्ते बोलते होंगे, उनके शब्द क्या होते हैं, वो हम बाबा को देखें। फॉलो फादर बाबा कहते हैं ना, तो बाबा ने यही क्यों कहा फॉलो फादर, या कुछ हमें महारथियों के लिए कहा कि आप उनको भी देखकर सीख सकते हो, मम्मा को देखो बाबा को देखो। क्योंकि जैसे हम दुकान में जाते हैं तो कुछ हमें खरीदना होता है, सब्जी खरीदनी होती है, तो अगर किलो सब्जी हमको चाहिए तो किलो का एक माप होता है, और अगर उस दुकानदार ने उस माप के बजाय एक किलो का एक पत्थर रखा हुआ हो और उससे हमको वो तोल कर देता है तो हम क्या सोचते हैं, है ना, शायद इसने कम दिया होगा, क्योंकि उस पत्थर पर हमको विश्वास नहीं होता। परंतु वो जो गवर्नमेंट का सिक्का लगा हुआ है वो पत्थर जो है ना उस पर हमें पूरा विश्वास होता है कि ये बराबर किलो माप है। ऐसे ही प्यारे बाबा ने हमको क्यों कहा फॉलो फादर फॉलो मदर। फॉलो मदर फादर इसलिए कहा क्योंकि उन पर ऑलमाइटी गवर्नमेंट का सिक्का लगा हुआ है कि उनको आप देखेंगे और जो करेंगे वो बिल्कुल 100% राइट होगा, बाकी दूसरे सभी पुरुषार्थी हैं। अभी हमारी दादियों के लिए भी बाबा ने कहा, प्रकाशमणि दादी के लिए और दादियों के लिए भी कहा कि आप इनको भी देख सकते हो, इनके समान भी चल सकते हो, इनको देख करके इनको भी फॉलो कर सकते हो। तो नंबरवार बाबा उनको क्या करते हैं, अपना सिक्का लगाते जाते हैं, परंतु हम सब बाबा के बच्चे अभी क्या हैं, नंबरवार हैं। अभी हम बाबा से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए माता पिता को और अपने वरिष्ठों को हमें फॉलो करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो मनसा वाचा और कर्मणा से हमें अपनी स्थिति को बनाना है। ओम शांति।